ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
11வது ஸ்லோக் பேலே போலேங்க. வட்ட விட்ட பிசமீபே பூமி பாகே நிஷன்னம் சகல முனி ஜனானாம் ஞான தாதாரமாரா. த்ரிபுவன குருமீஷம் தட்சிணாமூர்த்தி தேவம் ஜனன மரண துக்க சேத தக்ஷம் நமாமி. சித்ரம் வடதரோர் போலே வ்ருத்தாசிஷ்யா குரோர் யுவா குரோஸ்து மௌன வ்யாக்யானம் சிஷ்யாஸ்து சின்ன சம்சயாஹ. ஓம் நம பிரணவார்த்தாய சுத்த ஞானைக மூர்த்தயே நிர்மலாய பிரசாந்தாய தட்சிணாமூர்த்தயே நம. நிதயே சர்வ வித்யானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் குருவே சர்வலோகானாம் தட்சிணாமூர்த்தயே நம. மௌனவ்யக்ய பிரகடிதி பரப்ரஹ்ம தத்வம் யுவானம் வர்ஷேஷாந்தே வசத்ருஷிகணைஹி ஆவ்ருதம் ப்ரஹ்ம நிஷ்டைஹி. ஆச்சார்யேந்திரம் கரகலித சின்முத்ரமானந்த ரூபம் ஸ்வாத்மா ராமம் உதித வதனம் தட்சிணாமூர்த்தி மீதே. பிரதம் ஸ்லோக் விஸ்வம் தர்பண த்ருஷ்யமான நகரே துல்யம் நிஜாந்தர்கதம் பஷ்யன்னாத்மனி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதா நித்ரயா. யஸ்தக்ஷத் குருதே ப்ரபோத சமயே ஸ்வாத்மானமே பாத்வயம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே. பீஜஸ்யாந்தரி வாங்குரோ ஜகதிதம் ப்ராங்னி விகல்பம் புனஹ மாயா கல்பித தேஷ கால கலனா வைசித்ர சித்ரீகிருதம். மாயா வீவ விஜும்பயத்யபி மகா யோகி வயஸ்வேச்சயா. தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே. ಯಸ್ಯೈವ ಸ್ಫುರಣಂ ಸದಾತ್ಮಕಮಸತ್ಕಲ್ಪಾರ್ಥಕಂ ಭಾಸತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತತ್ವಮಸೀತಿ ವೇದವಚಸ ಯೋ ಬೋಧಯತ್ಯಾಶ್ರಿತಾನ್. ಯಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಾತ್ ಭವೇನ್ನ ಪುನರಾ ಮೃತ್ತಿರ್ಭವಾಂಬೋ ನಿಧೌ. ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮೈದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ. ನಾನಾಚಿತ್ರಘಟೋದರಸ್ಥಿತ ಮಹಾದೀಪ ಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯಸ್ಯ ತು ಚಕ್ಷುರಾಧಿಕರಣ ದ್ವಾರಾ ಬಹಿ ಸ್ಪಂದತೆ. ಜಾನಾಮೀತಿ ತಮೇವ ಭಾಂತಮನುಪಾತ್ಯ ಸಮಸ್ತಂ ಜಗತ್. ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮೈದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ. ದೇಹಂ ಪ್ರಾಣಮಪೀಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಪಿ ಚಲಾಂ ಬುದ್ಧಿ ಚ ಶೂನ್ಯಂ ವಿದುಃ. ಸ್ತ್ರೀ ಬಾಲಾಂಧ ಜಡೋಪಮಾ ಸ್ವಮಹಿತಿ ಭ್ರಾಂತ ವೃಷಂ ವಾದಿನಃ. ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ವಿಲಾಸ ಕಲ್ಪಿತ ಮಹಾವ್ಯಾಮೋಹ ಸಂಹಾರಿಣೇ. ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮೈದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ. ಮೇರೆ ಪೀಚೆ ಬೋಲ್ನಾ. ಮಂಗಳಂ ದಿಶತು ಮೇ ವಿನಾಯಕೋ, ಮಂಗಳಂ ದಿಶತು ಮೇ ಸರಸ್ವತಿ, ಮಂಗಳಂ ದಿಶತು ಮೇ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಮಂಗಳಂ ದಿಶತು ಮೇ ಸದಾಶಿವ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಂ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೋ ವಂದೇ ಭಗವಂತೋ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದ ವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮವದ್ ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ರೆಪಿಸೆ ಬೋಲ್ನ. ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ, ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ, ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ಸಿದ್ಧೀರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ. ಓಂ ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ. ವಿಶ್ವಂ ಅಂತರಾತ್ಮನಿ, ದರ್ಪಣ ದೃಶ್ಯಮಾನ ನಗರಿ ವತ್. ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕ ಆಜ್ ಉಪಸಂಹಾರ ಕರೆಂಗೇ. जरा मन एकाग्र करके ये औपनिषद सिद्धांत है उनको सुनिए। दर्पण में जो दृश्य नगरी का दिखता है, दर्पण अपने में कोई भी विकार किए बिना जो का त्यों रहकर न नगरी दर्पण के अंदर गई न नगरी दर्पण से उत्पन्न हुई, फिर भी दर्पण में है ऐसे दिख रही है। इसी प्रकार से दर्पण की जो सरफेस है वो तो बिल्कुल सरस है, इसी प्रकार से चिदात्मा में चैतन्य आत्म स्वरूप में ये समग्र विश्व प्रपंच प्रतीत होता है। न इसके भीतर जाता है न चैतन्य से ये विकृत होकर प्रकट हुआ है, उसमें सिर्फ दिखता है। जगत हमें बाहर मालूम पड़ता है, आप कहते हैं भीतर है आत्मा में, पर हमें तो बहिः इव भाति। तो उसका उत्तर आया मायया विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया। आत्मनि सच्चिदानंद आत्मनि मायया, या माया शब्द का अर्थ अविद्यया। बहिः भूतम यता सुषुप्ति में हम जब जागृत से पहुंचते हैं उस समय का अनुभव है न किंचित अवेदिशम सुखम अहम अवापसम। जागने के बाद दो चीज कहते हैं, उस समय मैं सुखी था और कुछ जानता नहीं था। तो जागृत से हरेक व्यक्ति सुषुप्ति में ही जाता है, निद्राग्रस्त होता है, निद्रा से फिर स्वप्न में आता है, स्वप्न से फिर निद्रा में जाकर जागृत पे आता है। ये क्रम याद रखना, जागृत से निद्रा, निद्रा से स्वप्न, स्वप्न से निद्रा और निद्रा से जागृत। स्वप्न से कोई नहीं जागता है, इसको साइंटिफिक रूप से रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। जब स्वप्न दिखता है मन में सुषुप्ति में, तब उस समय आपकी आंख जो है वो चलती है और उसको देख के वो लोग को मालूम पड़ता है ये सोया हुआ व्यक्ति इस समय थोड़ी क्षण के लिए स्वप्न दिखता है, रैपिड आई मूवमेंट इसके द्वारा। अब छोड़ो सबको, सुषुप्ति से जब अर्ध विकास अर्ध जागृत होता है तो जागृत में जो संस्कार प्राप्त हुए हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के, वो स्मृतियां फिर जागृत हो जाती है। हम सोए हुए हैं पर मन जाग जाता है, उसी का नाम है स्वप्न जगत। उसी में फिर से सिंह भी दिखता है, जंगल दिखता है, बड़े वृक्ष दिखते हैं, पहाड़ दिखता है, बादल, तालाब, नदी, समुद्र, पक्षी, मनुष्य सब दिखते हैं और सच्चे दिखते हैं। और वो स्वप्न हमारे मन के भीतर है, फिर भी उस समय वो कहां दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। उस समय रात्रि का समय है पर स्वप्न में क्या है, दिन का समय दिखता है। स्वप्न में अंधकार दिखता है कि प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश कौन सा है, स्वप्न का है। इसलिए वहां सूर्य चंद्रमा प्रकाश दिन रात सब दिखता है। वो अंदर होने पर भी, स्मृति जन्य होने पर भी, मन में ही होने पर भी, वो मन भी आत्मा में होने पर भी बहिही मायया। इसी प्रकार से यह विश्व प्रपंच आपको और हमें लगता है ये बाहर है, पर सचमुच ये आत्मा के भीतर ही दिख रहा है, आत्मा में ही दिख रहा है, आत्मा से भिन्न नहीं है। पर ये महाराज हमें सबको लगता है कि बाहर का जगत सचमुच है और दिखता है। अभी यहां एंथ्रोलॉजिकली इस जगत की सत्ता किस प्रकार की है, इसकी थोड़ी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। हमारे यहां तीन प्रकार की सत्ता मानी गई है। एक है व्यावहारिक सत्य, व्यावहारिक सत्ता। दूसरी है प्रातिभासिक सत्ता और तीसरी है पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभासिक वो है जो आपको ही दिखे या सबको भी दिखे, पर वो व्यावहारिक की तरह सत्य नहीं है। रस्सी में सांप का दिखना, ये दिखने वाले को ही दिखता है और किसी को नहीं दिखता है, इसलिए क्या है प्रातिभासिक। ये आदमी मेरा पति है, ये कहां दिखता है? व्यावहारिक है। पति आंख से दिखता है कि मन से दिखता है? सुबह सुबह प्रश्न पूछे महाराज तो गड़बड़ हो जाता है सर। बाहर तो पुरुष दिखता है जो सबको दिखता है, एक कहता है मेरा पुत्र है, एक कहता है हमारा दामाद है, एक कहता है हमारा भाई है, दूसरा कहता है हमारा पड़ोसी है, चौथा कहता है मेरा दुश्मन नंबर पांच है और छठा कहता है हमारा क्या है पति परमेश्वर, मेरे कम भाग्य है कि इनसे मेरा विवाह हुआ। पहले तो बहुत लगता था इनके बिना जीवन क्या है, अभी मालूम पड़ा कितनी बेवकूफी थी। ये सब ये पति कोई चीज है, ये हमारा घड़ी सबको दिखता है, ऐसे पति नाम की कोई चीज सबको दिखती है? सबको पति दिखता है? ना दिखे वही अच्छा है। सबको क्या दिखता है? पुरुष व्यावहारिक है। पति क्या है बोलो? प्रातिभासिक। आज से बोला पत्नी क्या है? प्रातिभासिक। पुत्र क्या है? प्रातिभासिक। दामाद क्या है? दुश्मन नंबर पांच। अगर ये सब प्रातिभासिक है तो आपकी समस्या भी क्या है? प्रातिभासिक। उसको क्या करना है? कुछ नहीं करना। प्रातिभासिक मानी दिखता है पर होता नहीं है, आपको ही दिखता है। स्वप्न किसको दिखता है? आपको ही दिखता है। मैं आपकी बगल में सोया हुआ होगा तो भी आप पे चढ़ा हुआ जो हाथी आपकी छाती पर चढ़ गया हु कर दिया आप, तो मुझे हाथी कुछ करेगा? एक अच्छी बात है, स्वप्न का हाथी दूसरे को तंग नहीं करता है, और बंबई के छोटे फ्लैट में हाथी कैसे आया ये भी समझ में नहीं आता है। कई लोग तो ट्रेन में वो है ना, ये थ्री टीयर एसी होता है, थ्री टायर कहते हैं लोग, उसको टीयर बोलना चाहिए है ना, थ्री टीयर एसी में बीच वाली सीट में सोया है और उसको हाथी दिख रहा है, वह हाथी कैसे आएगा? तुम भी जैसे तैसे गए हो तो हाथी कहां से आएगा? तो प्रातिभासिक है कि नहीं? आकाश की नीलिमा, सूर्योदय सूर्यास्त क्या है? सूर्योदय होता नहीं है, पृथ्वी घूम रही है। तो कई चीज हमें दिख रही है पर विचार करते हैं तो इसको है, इसका एक नाम शास्त्र में है मिथ्या। प्रातिभासिक जगत व्यावहारिक जगत की दृष्टि से क्या है? मिथ्या। तो भाई ये बात करो तो व्यावहारिक जगत सत्य हो गया। यहां का देश भारत देश में है। एक बात मैं कहता हूं, जब भी मैं अमेरिका से इंडिया लौटता हूं तो हृदय में जो आनंद होता है वो तो जो आने वाले को मालूम है। भारत के प्रति प्रेम को अगर बढ़ाना है तो थोड़े समय विदेश जाओ, वहां जाने के मालूम पड़ेगा कि भारत के लोग कितने अच्छे हैं, यहां की संस्कृति कितनी समझदारी है इसमें। सेन सेन मीन्स इसमें बड़ा बड़ा ज्ञान भरा है। दे आर सेम पीपल, बहुत सूझबूझ है। कितनी महान संस्कृति है। जितनी बार मैं अमेरिका गया मेरा भारत के प्रति प्रेम बढ़ गया। तो जाना आना देश विदेश काल, ये समय हम यहां आए। हमारा जन्म का ज्योतिष निकाला है, कौन से दिन आपका जन्म हुआ है, क्या आपका नक्षत्र है, क्या आपकी राशि है, क्या आपका सब निकाला हुआ है, लग्न क्या है, लग्न माने ज्योतिष की दृष्टि से सब है। ये व्यावहारिक सत्य। हमारा शरीर है, बाहर भोजन है, खाते हैं, भूख दूर होती है, ये प्रातिपाथिक है कि व्यावहारिक है? हाँ व्यावहारिक है। वो ठीक है, पानी पीते हैं प्यास दूर होती है, कुछ चीज पीते हैं नशा हो जाता है, ये क्या है? व्यावहारिक है। व्यावहारिक जगत सत्य लगता है। ये जगत भी हमारे भीतर ही है। प्रातिभासिक जगत स्वप्न जगत हमारी भीतर ही है, बाहर दिखता है। व्यावहारिक जगत भी बाहर दिखने पर भी आत्म चैतन्य से पृथक नहीं है, आत्म चैतन्य में ही दिख रहा है। ये बात कैसे समझ गया है? तो कहते हैं कि प्रबोध समय। प्रबोध समय माने जागना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत सुरस्य दारा निशित दुरत्यया दुर्गम पतत तत्कवयो वदंती। ये मंत्र उपनिषद का है और लोगों ने सब जगह उसका अर्थ लिख दिया है, गलत अर्थ। जागो उठो रुको नहीं जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो। ऐसे अराइज अवेक अराइज स्टॉप नॉट अनलेस यू रीच योर गोल। मंत्र कुछ लिखा है और ये लोग का भाषानुवाद क्या है? बिल्कुल उल्टा है। उत्तिष्ठत का अर्थ होता है अनादि अविद्या सुप्त जीव उत्तिष्ठत। अनादि काल से अविद्या में सोए हुए ये जीव, आप उस अविद्या से उठो। जागृत अविद्या क्षयं कुरु। पहले अविद्या से है हमको अज्ञान दूर करना है, इसके प्रति जागृत हो जाओ, इसको जिज्ञासु बनना। हमें मालूम ही नहीं हमको क्या जानना है, हमको लगता है हमारा ज्ञान ठीक है। नहीं भैया, तुम ये स्वप्न को सत्य मान के उसमें बह रहे हो। अनादि अविद्या प्रसुप्त जीव जागृत। और दूसरी बात कहा है उत्तिष्ठत जागृत अविद्या क्षय करो या विद्या का नाश करो। इस महास्वप्न से जागो। कैसे? वरान निबोधत श्रेष्ठान वरान। गुरु के पास जाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त करो, ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण करो। वरान निबोधत उसके द्वारा उपदिष्ट ये ब्रह्म विद्या से ये जागृत भी स्वप्न है ये मालूम पड़ेगा। प्रबोध समये स्वात्मानमेवात्वयम्। अब क्या होता है, एक गौड़पाद कारिका का श्लोक है, अनादिमायया सुप्तः जीव यदा जीव प्रबुध्यते अजम अजमनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। एक बात है, सत्य और मिथ्या ये दो शब्द का अर्थ ठीक ठीक बुद्धि में ग्रहण करना चाहिए। आप लोग ने कई लोगों से आप सुना होगा ये सब जगत मिथ्या है कि नहीं, सुना है कि नहीं, ऐसे हाथ करके बताए पूर्ण जगत मिथ्या है, ये सब जगत है मिथ्या है, और हम लोग भी हाँ हाँ करते रहते हैं। ये हाँ हाँ क्या करना है, सब बात में हाँ करना समझे बिना, इसको कहते हैं पार्किंसंस। पार्किंसंस वाले ना ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो वो सब में हाँ कहते रहते हैं। पूर्ण जगत मिथ्या कहने का आपको अधिकार ही नहीं है। श्रुति माता कहती है मिथ्या जगत नहीं है, जगत ईश्वर है। हमारे उड़िया बाबा जी कहते हैं एक जगत तेरे क्या चच्चा ने बनाया था, ये तो ईश्वर कृत है, ईश्वर जगत के रूप में प्रकट हुआ है, पर उसकी जो सत्ता है वो ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए ब्रह्म से पृथक उसका अस्तित्व नहीं है, ये समझना मिथ्यात्व निश्चय है। मिथ्या जगत नहीं है, जगत की सत्ता को समझना कि ये अपने कारण से पृथक नहीं है, इसी का नाम है मिथ्यात्व निश्चय। जगत मिथ्या नहीं है, जगत की सत्ता क्या है ये समझ का नाम है मिथ्यात्व बुद्धि। आपको समझ में आता है? आप देखिए घड़ा और मिट्टी,